अब यहाँ इसको ज़रा सा देखिएगा, ये आयत आपसे मुझसे बहुत कुछ तकाजा करती है, बिलीव मी। देखिए, नबी सल्लम के बाद सबसे पहले जो लोग इस दावत को लेकर उठे थे वो सहाबे कराम थे। थोड़ा सा मैं आपको इसका स्नैरियो सिखाना चाहती हूँ, समझ लीजिए, फ़ायदा होगा हम सबको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे ही, आपसे तो अल्लाह ने अपना काम लेना था, ले ही लिया, लेकिन नबी सल्लम के बाद दौरे सहाबा, और फिर हल्का हल्का सिर्फ चंद इशारे दे के आगे चलती जाऊंगी ताकि आपको मुझे इस काम का पूरा बैकग्राउंड पता हो कि ये कब कैसे होता है। पहली बात देखिए, नबी सल्लम की ज़िंदगी से दावत का काम शुरू हो गया। पहला लफ्ज़ इस्लाम का, इकरा बिस्मी रब्बी का, ये है आप सबीलुल जन्ना, खुद पढ़िए रब के नाम के साथ। सबसे पहला काम दावत का स्टेप क्या है, खुद इल्म लीजिए। और मुझे एक जुमला बोलना ही पड़ेगा कि बग़ैर तालीम हासिल किए जब तबलीग शुरू हो जाती है तो अधूरा दीन पेश किया जाता है। आज बहुत सारे लोग तबलीग पे जोर देते हैं, तालीम नहीं, और तालीम के लिए कुछ मखसूस किताबें नहीं। 3 दफ़ा कुरान पाक में नबी सल्लम की यह सुन्नत और आदत कि आप कौन हैं, जो आपकी दुआ थी हजरत इब्राहिम की, रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, ए रब भेज दे इनमें एक रसूल इन्हीं में से, क्या करे, यतलु अलैहिम आयाती, जो इन पर तेरी आयतें पढ़े। आपने जो कुरान सीखा है अभी तक अरबी में, तजवीद जिसको कहते हैं, ये यतलु अलैहिम आयाती, अगर इसमें कमी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले कोर्स में पूरी हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। कोशिश करते रहेंगे, ये काम आगे से आगे आपका बेहतर होता जाएगा। दूसरा काम था अल्लाह के नबी का, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, किताब सिखाना, ये था आपका लफ्जी तर्जमा और उसकी तफसीर। युअल्लिमुहुम, सिखाया उनको, यानी कह लीजिए कि लफ्जी तर्जमा, वर्ड टू वर्ड कह लीजिए, आप अपनी इस्तलाह में लफ्जी कहते हैं ना, मुराद ये कि कुरान को अपनी ज़ुबान में समझना शुरू कर दो, और उसका आसान सा तरीका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। और हिकमा क्या है, तफसीर, कुरान कहता क्या है, कब किन हालात में ये नाजिल हुआ था, ये सारा कुछ उसमें आ गया, ठीक है। और इसी में इमाम शाफी ने हिकमत के लफ्ज़ को हदीस बोला है कि जहाँ भी कुरान के साथ युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा आता है तो किताब से मुराद कुरान और हिकमत से मुराद हदीस। पहले यतलु अलैहिम, फिर युअल्लिमुहुम लफ्जी तर्जमा, फिर हिकमा तफसीर और हदीस, और आगे व युज़क्कीहिम। बाज़ आयतों में युज़क्कीहिम का लफ्ज़ पहले है, बाज़ में बाद में, दुआ में कुछ और है और कबूलियत में और है, अभी डिटेल्स में नहीं जा सकती। कभी कभी तज़किया साथ ही शुरू हो जाता है, और कभी कभी तज़किया सीखने के बाद होता है। मैं इसको अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बेस पे समझा सकती हूँ। दौरे कुरान मेरी नज़र में इल्म की भूख लगने का मौसम होता है। 1 महीने का एक कुरान, एक एक दिन में लोग पढ़ते और सुनते जाते हैं। कई लोगों का तज़किया उसे एक दौरे कुरान से ही हो जाता है। वो कहते हैं सूद नहीं लेना, सब खराबियां निकाल दो, चलो अब मजीद भी सीखते, उनके अमल का वक्त जो है ना वो शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ऐसे हरे पौधे कर दे कि बारिश के पहले छींटे से ही अमल की तरफ चल पड़े, ठीक है। उनका तज़किया दौरे कुरान से शुरू हो जाता है, और इसको मैं कई स्टूडेंट्स के ऊपर क्यास करते हुए कहूँगी कि सबीलुल जन्ना के पहले दूसरे पारे में ही अमल शुरू। वो नहीं कहते सूरत नूर आएगी तो देखेंगे, और वो नहीं कहते अभी नहीं, बहुत दफ़ा पढ़ा है सुना है देखेंगे, वो जो जो आयत आती है उनके अमल में आती है। कि ज़रूरी नहीं कि आप सूरत नूर पढ़ें तो ही आप अपने हिजाब लिबास की फ़िक्र करें, ठीक है। अब क्या हुआ, कुरान पढ़ लिया, यतलू अलैहिम युअल्लिमुहुम तर्जमा, अपनी ज़बान में समझ लिया, हिकमा उसकी तफसीर, और साथ हदीस जोड़ लीजिए, व युज़क्कीहिम, फिर दाई दीन का तज़किया होना चाहिए। तज़किये के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, एक होता है हालात और वाक़यात के साथ तज़किया, और वो क्या होता है, जो बिलाल का हुआ कोयलों पे लेटा कर, बात समझ गया, जो हबाब बिन अरद का हुआ लोहा कुटवा कर उनसे, हालात की जो चक्कियों में पिसे थे सहाबा कराम, इसने इस फसल को मजबूत कर दिया। ये जो आज सहाबा का मौजू छिड़ गया ना, तो इसको तो पढ़ने से पहले बंदे को नैपकिन साथ रखना चाहिए। जिन हालात में ये खेती तैयार हुई, ये कोई बहुत आइडियल हालात नहीं थे, ये पम्पी एंड ग्लैमरी दीन नहीं था उस वक़्त का, ये बहुत बड़ा नाम नहीं था, ग्लोबली रीनोन और बहुत मशहूर नाम नहीं था इस्लाम, अननोन थे, और दारे अरकम की चटाइयों पे बैठ के अल्लाह के नबी से ये सारे तज़किए के मराहिल कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, अमानत का हक अदा किया, खैर ख्वाही के साथ तौहीद की दावत सिखाई और वैसा हक अदा किया जैसे हक का जिहाद ही था। लोगों को पहले ज़रा सा छुपाकर यानी खुफिया दावत दी, फिर ऐलानिया दी, और अल्लाह की राह में ना सिर्फ ये कि खुद शदीद अजियतें बर्दाश्त कीं बल्कि आपके अस्हाब ने भी, लेकिन सब्र और इस्तकलाल का दामन नहीं छोड़ा। याद रखिए, अल्लाह के नबी से पहले के अम्बिया ने भी सब्र किया। जिसने भी दावत का काम करना, उसको सबसे बड़ा पत्थर जो दिल पे रखना है वो सब्र का। तो ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए, 101 पॉइंट बन जाएगा। सब्र ज़रूरी है दाइये दीन के लिए, साबिर हो। आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और उस दौरान तकलीफें आईं, सब कुछ आईं। आप देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा समायगत 23 साल थोड़े नहीं होते, और आपने घर घर तक दावत दी, बात पहुंचाई जिस तरीके से कर सके। पहले मक्का, फिर ताइफ, फिर मदीना में चले गए, और इसमें जाकर लोगों के पीयर प्रेशर की परवाह किए बगैर आपने ये काम किया, और आपके कदमों में ज़रा सी भी लग्जिश नहीं आई, यानी आप शेक नहीं हुए। और इसके साथ साथ अपने आला अखलाक के साथ, किरदार की खूबसूरती के साथ लोगों के दिल जीतते रहे। किसी का कचरा फेंकने पे उसको जाकर उसकी कह लीजिए तीमारदारी करने पे जब वो ना फेंक सकी, और किसी औरत जो आप ही के दुख से शहर छोड़ के जा रही थी उसका बोझ उठा लिया, ये आपको भी करना पड़ेगा। दाइये दीन एक फुल टाइम सपोर्टर भी होता है, वो लोगों की बीमारियों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों में भी उनको हेल्प करता है, और उसकी सारी हेल्प का मकसद ये होता है कि ये कुरान से जुड़े रहें। आप आ जाइए, ये मैं कर लूँगी, आपके से राइट नहीं मैं दे दूँगी, आपका खाना नहीं पकता मैं पका जाऊँगी, एक दिन आकर आपकी सफाई भी कर जाऊँगी। याद रखिए, वेलफेयर के काम और तालीम के काम साथ साथ चलते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। और अल्लाह के नबी का ये अमल सहाबा के लिए एक चलता फिरता नमूना था। लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। आपके इर्द गिर्द के लोगों ने साफ पहचान लिया था कि आप मुखलिस हैं, सच्चे हैं, आपकी दावत सच्ची है, लेकिन किस चीज़ ने उनको आगे नहीं आने दिया? तासुब, इनाद, हम बड़े थे ये क्यों बना, हम भी कुछ कहते थे वो नहीं। और याद रखिए, अल्लाह के नबी का दिल कुड़ता था, गुस्सा नहीं आता था आपको। एक जुमला लिख ले, दाइये दीन पे जब मुश्किल आती हैं, लोग कोई बातें करते हैं बनाते हैं, उसको दुख होता है, गुस्सा नहीं आता। मसलन सूरत अल-अनाम 33, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ। ए नबी, हम जानते हैं कि इनकी बातें आपको गमगीन करती हैं। ये काहली यहज़ुनक, हुज़न से, ये निकली यग़ज़ब, तुझे गुस्सा दिलाती हैं। तो दाइये दीन और गुस्सा, अल्लाह की पनाह, गुस्सा नहीं करना, ये भी अमल लिख लीजिए। दावत देते हुए गुस्सा करना अगले को हमेशा के लिए उस दीन से बदगुमान करना, ठीक है, तो आपने भी गुस्सा नहीं करना। दूसरी बात ये कि मुस्तकिल 13 साल आपको डिनाई किया गया, एक जुमला आप मुझे लाकर निकाल कर दिखा दें, बुखारी से, मुस्लिम से, सियासत्ता में से, सीरत की किसी किताब से, कि अल्लाह के नबी बैठ के इनको हिदायत कोई नहीं मिलनी, इन्होंने नहीं आना, ये खोटे हैं, ये खरे नहीं, ये मुनाफिक है। तो अगला अमल लिखिए, दाइये दीन के औसाफ में तनकीद नहीं करता मदूप है, बल्कि उम्मीद रखता है कि ये हो जाएगा, और मुखालफतों में अपने आप को बचा कर रख लेना, ये बड़ी बात है, और सादिक और अमीन कहलाना पड़ेगा दाइये दीन को। एक जुमला लिखिए, ये जम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सादिक और अमीन कहलाए, फिर दाइये दीन बने, फिर 23 साल लगे तो दीन फैला। आज उम्मत भी यही मिशन लेके उठी है, तो उम्मत को भी पहले सादिक और अमीन का लकब लेना पड़ेगा। ये झूठ नहीं बोलते, ये दिखाते कुछ और देते कुछ और नहीं है, इनके सैंपल्स कुछ और प्रोडक्ट कुछ और नहीं है, ये दगाबाज नहीं है, ये झूठे कागज़ बनाकर वीज़े नहीं लेते, ये पासपोर्ट्स पे शक्लें बदल कर तस्वीरें नहीं लगा लेते। आज उम्मते मुस्लिमा पूरे ग्लोब में अपने आप को अगर सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए कोशिश करे, अगले 5-10 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। लोग आपका मेरा अमल देखेंगे, लफ्ज़ तो कोई सुनता है, अमल सब देखते हैं, सारा दिन आपकी डीलिंग होती है ना, घर के अंदर मेड्स आती होंगी, मेड के साथ आप एक मास्टर और मेड का ताल्लुक ना रखा करें, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भी रखा करें, क्योंकि वो आपकी हर बात से कहेगी, या नमाजें बड़ी पढ़ते हैं, मेरी तनख्वाह काट ली, इस तरह की बातें। हर जगह दुनिया के हर मैदान में सादिक और अमीन कहलाएंगा, दाइये दीन फिर दाइये दीन बने, वरना पीछे हो जाए अभी। और मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि ये कितनी बड़ी अमानत है कि आप खुद जिस बात की दावत दें उस पर अमल करें। तो कल मेरे दिल में ये बात आई कि दावत देते रहिए, सामने ना आए। अगर आप अभी अमल नहीं कर रहे, करना नहीं चाह रहे, अभी आप अमल की तस्वीर नहीं बन पाते ना, तो फिर सरेआम आकर दावत ना दीजिए, ताकि मेयार खोटे ना हो जाए। ढक छुप के नेकियां कर लें, पीछे रह लें, आप पीछे कंप्यूटर को संभाल लें, आप बच्चों को संभाल लें, वो भी आपका अजर तो पूरा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह नहीं जाया करता। पर लोगों की नजरों में मत आइए जब तक आप खुद जरूरत नहीं रखते अमल करने की, वरना फिर वही बात है कि मेयार बदल गया तो लोग क्या करेंगे। खैर, अल्लाह के नबी के साथ जो कुछ हो रहा था ना, ये सहाबा के लिए एक खामोश ट्रेनिंग थी। आपने क्या किया? एक तरफ तो हालात की चक्की में सहाबा खुद भी पिस रहे थे और आप भी थे, दूसरी तरफ ऊपर से मुस्तकिल कुरान नाजिल होता रहा। आपको पता है ना, 2/3 ऑफ कुरान इज मक्की, पता है ये बात कि नहीं? 86 या 84, यानी 80s में नंबर है मक्की सूरतों का, और बाकी ऊपर थोड़ी सी मदनी सूरतें हैं, शायद इससे भी ज्यादा। अब आप मुझे बताइए कि कुरान का 2/3 सहाबा के सीने में चला गया, और एक जुमला लिख लें, कुरान पढ़े बगैर एक बाज़ाब्ता तरीके से आप दावत का काम कर ही नहीं सकते। देखिए, आप किसी को दावत क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको खुद ही बात नहीं पूरी पता। एक जुमला लिखिए, आज उम्मत मुस्लिमा की जहालत खुद अपने दीन से लाइलमी उनको दावत से रोके हुए। सच है कि झूठ? पता नहीं गलत ही ना बोल दूं, पता नहीं ठीक ही ना बोलूं। आप जो काम खूब अच्छा करते हैं ना, वही दूसरों को बताते हैं। आपको खाना बनाना आता है, आप उसकी रेसिपी शेयर कर देंगे। तो आज लाइलमी ने हमें दावत से रोका हुआ है। खैर, नबी सल्लम के साथ सहाबा को तकलीफें होती गईं, ये आपकी ज़िंदगी में हुआ और फिर सबको पता जो हुआ, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मक्की दौर पूरा हुआ, वो कांटों पे पत्थरों पे लटाए गए, खूब तज़किया हो गया, और कुफ्फु अईदियकुम नाम लिखिए, सूरत निसा की आयत है, कुफ्फु अईदियकुम, हाथ रोक के रखो। अमीर की इताअत सहाबा ने मक्का में सीख ली थी। देखिए, हज़रत अली थे ना मक्का में, जिन्होंने बाद में खैबर में इतने जौहर दिखाए, उन्हीं की बात कर लेते ना। हज़रत हमज़ा थे जो कितने बेदर्दी से लड़े और ओहद में चले गए। मक्का के 13 साल इन्होंने क्यों नहीं जाकर किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया? आप खुदरियाँ नहीं करते थे, ये भी जुमला लिखिए। सहाबे किराम की खूबी थी, बगैर इंस्ट्रक्शंस के काम नहीं करते थे, और नबी सल्लम आपके अमीर थे, नबी तो थे ही, लेकिन ये मामूरीन बन गए। कह लीजिए कि जिसको बड़ा बना लिया उसकी बात को पत्थर पे लकीर समझते थे। इसीलिए पूरे 13 साल में एक झड़प भी नहीं हुई कि हजरत उमर को गुस्सा आया, जाके काफर का मुंह तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा था भी नहीं जाना आगे। सहाबा तो रुक जाते थे जहां रुका जाए, चलते ही नहीं थे जब तक कहा ना जाए। दावत इल्लाह का ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आप एक डिसिप्लिन के साथ इंस्ट्रक्शंस लेकर काम करें, और वो काम करें ही ना जिसके भी इंस्ट्रक्शन दी नहीं हुई। अपने से क्यास नहीं किया कि आप, मेरा ख्याल है सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अबू जहल आ जरा तुझे मैं मजा चुका हूँ, ऐसा नहीं होता था। और आखिर फिर क्या हुआ? आप मक्का छोड़ के मदीना चले गए। यहाँ मैं बड़े सोच के बोलने लगी हूँ, मक्का में सहाबा की तरबियत हुई अमली मैदान में, वही बात जो सारी अभी हो रही है तकलीफ़ों में डालकर, लेकिन अब मदीना में आकर एडवांस कोर्स हो रहा है। मुझे जुर्रत दे दीजिए बोलने की, मक्की दौर को रख लीजिए सबीलुल जन्ना, सिर्फ बैठो, सबर सबर, कुछ नहीं करना, अभी नहीं जा सकते आगे, अभी अपना तज़किया करो। कुरान पढ़ते थे और बस सबर करते थे। उसके बाद मदनी दौर इज तरबियत का दौर, ये नूरुल नूर है आपका। और मज़े की बात देखिए कि मक्की लंबा था, मदनी छोटा था, आपका भी सबीलुल जन्ना का टाइम ज़्यादा है, नूरुल नूर का टाइम कम है। इसमें अल्लाह अकबर हर दिन नया महास, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं, फूलों पे नहीं, पत्तियों पे नहीं, कांटों पे चलना पड़ता है। तरबियत के मराहिल बदर से लेकर तबूक तक, एक तरफ तो जंगे मलाहम और दूसरी तरफ मदीना को डिवेलप किया जा रहा था। मीसाके मदीना, अखवाते मदीना, मुस्लिम महाजिर और अंसार भाई बने, सबको याद है ना, ये सब ट्रेनिंग थी। डोंट वरी प्लीज, आप इसको समझिएगा, अगर सहाबा नबी सल्लम के साथ 23 साल में ये दो कोर्सेज ना कर चुके होते तो बाद में दावत इल्लाह का काम इस तरह नहीं होना था जैसे हुआ है। बात वाजी हो गई? जो इन रस्तों से चला नहीं वो दावत नहीं देगा, और जो सीखने में मुश्किल नहीं सह सका वो सिखाने में कहाँ होगा। जो सीखने में पंक्चुअल नहीं वो सिखाने में कहाँ होगा, जो इसमें रेगुलर नहीं वो उसमें कैसे होगा, जो इसमें नहीं अपने स्कोप कर सका चीज़ों को वो इधर कहाँ होगा। बिलीव मी, जो इसमें कुर्बानियाँ नहीं दे सका वो उसमें कहाँ देगा। हम में कितने हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी दी हैं, तो अल्लाह देखेगा एक एक कुर्बानी का वापस लाएगा बदला। हिजरतें की हैं, एक एक चीज़ वापस मिलेगी। अल्लाह रखता नहीं है, छोड़ देता है बंदे पे, तुम करो। होते होते ये सब खत्म हुआ। अब सीरत आपने 20ों बार पढ़ ली, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दावत इलल्लाह, दौरे सहाबा में। सहाबा के दौर में दावत कैसे हुई? अल्लाह के नबी एक बड़ा बोझ अपने असहाब के कंधों पर डाल के दुनिया से गए थे। हज्जतुल विदा पे क्या कह कर गए? क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया? हल बल्लगता जी अल्लाह के नबी का। वाकई पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात। सहाबा को कहा तुम में से हर एक इस काम को लेकर चले। अल्लाह ताला ने नबी से काम लिया, अपने पास बुला लिया। हम में से हर एक अपना हिस्सा डाल रहा है और हम में से हर एक चला जाएगा, जैसे हमसे बहुत सारे पहले चले गए। इमाम बुखारी चले गए, अबू हनीफा चले गए, इमाम मालिक चले गए, तो फिर हम आपकी इस खेत की मूलियाँ। अब्दुल्ला बिन बास चले गए चंद साल पहले, नासरुद्दीन अल्बानी साहब चले गए आज से 18-20 साल पहले। तो आप मैं क्या हैं अपने ऊपर लिखिए, अल्लाह को पता है 5 साल में, 10 साल में, 20 में, 25 में, हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। दाई लल्ला बनने के लिए एक बात लाजिम रख ले, काम वो करना है जो हमारे बाद हमसे ज्यादा हो। आपके सामने बहुत काम हो और आप हट जाएं, काम ना हो, तो आप नाकाम दाइयां हैं। फिर तो आपने लिख लिया कुल्लु मन अलैहा फान, जैसे मैं फानी हूं, मैं जाऊंगी मेरा काम भी खत्म होगा। आज मैं मर जाऊं तो क्या होगा? ये जुमला पिछले 20-22 साल से मैं खुद से पूछती हूँ और अभी भी अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। अब तो क्या कुछ हो गया, अब तो वो हो गया जो सिर्फ कह सकती हूँ ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती ही मैं यशा, या साथियों की कोई मेहनत और उनका इखलास है जो अल्लाह ने दिया, वो तो मेरे से तो संभलता ही नहीं है, मेरे तो हाथ ही बहुत छोटे हैं, पैमाना ही बहुत छोटा है। लेकिन या तो अल्लाह का फजल है या साथियों का इखलास है, ये मैं पूरे यकीन से कहती हूँ। तीसरी चीज़ जिसको मैं किसी खाते में डालती हूँ वो दुआएं हैं जो मिलती हैं, मिलती थी, मिलती हैं और मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक ऐसा वक्त आया, मैं खुद अपने दिल की आज आपको बात बता रही हूँ, कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। रब का पैगाम हम सब के नाम, ये कोर्स हमारा सुबह में शुरू हुआ, शाम में नूरुल कुरान के नाम पे एक क्लास होती थी, वो उससे पहले की थी, उसमें भी रिकॉर्डिंग हुई पर टूटी फूटी। पुराने एडमिन्स को पता कितनी को होगी, वो कहते हैं कि हमने वो रिकॉर्डिंग अब आगे सुनानी है। 4-4 घंटे का एक लेसन था। मैं कहती हूँ खुदा के लिए नहीं, सब भाग जाएंगे, इतना लंबा नहीं कुछ सुनता। मैं अक्सर सुनती थी कि अगर मैं इस कोर्स के दौरान, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं 10वें पारे पे हूँ, तो मैं मर जाऊँ तो क्या होगा। उस वक्त ना व्हाट्सएप था, ना वाइबर था, ना स्काइप था, कुछ भी नहीं था, बस अपना आप था। तो मैं अक्सर सोचती थी अल्लाह ताला ये क्या होगा, ये साथियों का कोर्स बीच में रह जाएगा। और अब ये वक्त आ गया कि मैं अपने सारे साथी जो हमारे साथ थे, जहाँ भी मैं होती मैं उनको कहती हूँ, बाजी को भी कहती हूँ कि बाजी किसी दिन सुबह सुबह आपको खबर मिले कि मेरा इंतकाल हो गया, और क्लास का टाइम है 9 बजे से 1-2 बजे तक स्टूडेंट्स हैं, आपने ये खबर पी लेनी है, आपने क्लास में जाना है, स्कूल में क्लास करानी है, रिकॉर्डिंग से हो जाएगी, अब तो कोई मसला भी नहीं है, अल्लाह जितना जिस सदके को जारी रखे। और फिर जब क्लास ख़त्म होगी ना तो एंड पे आके क्लास में अनाउंस कीजिएगा। ये मेरी उनको वसीयत है कि मेरे मरने की खबर पे उस दिन की क्लास आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि मैंने चले जाना है, मैंने इस सदका जारिया को नहीं रोकना। अपनी जिंदगी में वो काम कीजिए जो आपके बाद ज्यादा फैले। सहाबा की क्या शान आई है इसमें? खेती। और कैसी खेती? पहले कमजोर, फिर बड़ी, फिर फैलती फूलती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक जगह कि सहाबा वर नर्सरी ऑफ हीरोज। वो लिखने वाला इंग्लिश राइटर है, कहता है कि हर कौम के पास कोई एक हीरो है, किसी के पास दूसरा, जैसे बर्नार्ड शॉ, किसी के पास शेक्सपियर होगा ना। हर मुल्क के पास कोई 2-4 हीरोज हैं, मुस्लिम्स के पास नर्सरी ऑफ हीरोज है। ये है वो फाजर रहो, अल्लाह के नबी वो खेती लगा गए कि आपके बाद काम और फैला। देखिए नबी की जिंदगी में तबुक की सरहद है, मुल्क रोम है उसके आगे ना, वहां तक इस्लाम आया, हजाज का इलाका कह लीजिए, और उसके बाद अल्लाह के नबी के साथी फैल गए। एक हुक्म था उसको लेकर निकले, और सूरत अहजाब 39 नोट कर लें, युबल्लिगुना रिसालातिल्लाह, वो अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाते रहे, वो यख्शऊनहू, और वो उससे डरते थे, लेकिन वला यख्शऊना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह किसी से नहीं डरते थे। यानी अल्लाह के नबी के बाद लोगों ने रोज़े की जालियां नहीं चूमी, मस्जिद नबी को लिपट कर रो नहीं गए। होता मैं सग मदीना का और वहीं रोता रहता, यानी एक पोइट्री है किसी की कि मैं मदीना का कुत्ता होता और मैं मदीने में रहता और जालियों को चूमता, अल्लाह ने मुझे इंसान क्यों बना दिया। नाउज़ुबिल्लाह, ये रोमानवी शायरी नहीं अच्छी लगती नबी के साथ। साहबाए कराम आपके मिशन के राही बने, कहते हैं कि मदीना खाली हो गया था, सिर्फ वो लोग थे जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, मदीना के गवर्नर ये वो सब इधर उधर चले गए, किसी को कुछ, कोई गाजी बन के निकला, कोई मुजाहिद बन के निकला, कोई दाई लल्ला बन कर निकला, कोई सोले बन के निकला, कोई मुसलिह बन कर निकला, पूरी दुनिया में फैल गए जो उस वक्त के इलाके थे या अरब से इर्द गिर्द, और लोगों को दीन सिखाने लग गए, अकीदा फैलाया, और एक तरफ जंगों के जरिए फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया, जो काम नबियों का था अल्लाह ने वो काम असहाबे रसूल से लिया। याद रखिए कि उन्होंने लोगों से सिर्फ एक चीज़ पहले छुड़ाई थी और वो शिर्क था, और साथ ही साथ फिर नमाज़ों की प्रैक्टिस, और करते करते सहाबा कराम दावत देते गए। सहाबा के दौर में दावत देने के लिए कोई नाम नहीं था, गिरोह नहीं था, जमात नहीं थी, उन्होंने अमल से अल्लाह की इबादत का हक अदा करके दिखा दिया, और या युनासुबुदु रब्बकुम का हक अदा कर दिया। सूरत बकरा 21 में हम पढ़ चुके हैं, और इसी तरह माँ बाप के साथ औलादों को जोड़ा, वक़दा रब्बुका ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना, सूरत बनी इसराइल 23। और सहाबा ने इय्याका नाबुदु वइय्याका नस्तईन का सबक पढ़ाया, ये सिलेबस था सहाबा का, यही बता रही हूँ आपको। नए लोगों में जाएं तो सिर्फ ये बातें किया करें, इय्याका नाबुदु वइय्याका नस्तईन, और फला तदु मा अल्लाही अहदन, सूरत जिन आयत 18, किसी को ना पुकारो अल्लाह के सिवा। और ये बात कह लीजिए कि सहाबा इस आयत की चलती फिरती तस्वीर बन गए कि कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सूरह नाम के आखिरी आयतें 162 और 163। क्या पता चला कि सहाबा कराम ने अल्लाह का पैगाम बंदों को देना शुरू कर दिया, अब उनको अमली बातें मिली। चलिए आगे चलते हैं, ताबईन और तबा ताबईन का दौर शुरू होता है। सहाबे कराम के बाद जो दौर निकला उसको ताबईन, ताबईन मीन पीछे लगने वाले, और कुरान में यह आयत मौजूद है ना, वल्लज़ीन तबअहुम बिएहसान, एहसान के साथ जिन्होंने इतबा की और फिर जिन्होंने उनकी की वो तबा ताबईन। और अल्लाह के नबी की वो मशहूर हदीस आप कई दफ़ा कुरान की तफसीर में सुन चुके हैं कि खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर मेरा दौर, मेरे दौर के बाद, मेरे बाद वालों और उसके बाद वाला। शम्मा से दूर होना तो अंधेरा बढ़ता है, करीब हो तो रोशनी है। अल्लाह के नबी एक हिदायत की शम्मा थे, असहाबे रसूल सबसे ज़्यादा रोशन थे, सितारों की तरह चमके, उनके बाद ताबईन और तबा ताबईन, इस्लाम फैलता गया। अब आप देखिए कि पहले तो सभी अरबी थे, अरबी बोलते थे और अरब और हिजाज से उनका ताल्लुक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब इस्लाम फैला, हज़रत उमर के दौर में फतुहात हुई, तो फिर सहाबा के तबलीग के अंदाज में जो चीज़ थी ना, उससे अगली चीज़ क्या ऐड हो गई कि ताबईन और तबा ताबईन, और इस दौर में सारे आइमा कराम मुहद्दिसीने कराम, ये ताबईन और तबा ताबईन का दौर था। इन्होंने दीन का काम पकड़ लिया, इन्होंने दावत इल्लाह का काम, किस असबर असमा मरहलों से गुजरा है सहाबे कराम के बाद, ये जो दीन फैलाइए उसमें फिर हदीस की खिदमत हुई और लोगों को उनकी जुबानों में जाकर, इसमें फिर दीन में मुश्किल आई। इतनी हमारे असलाफ ने मुश्किलें सही, कोड़े पड़ते थे इमाम अहमद बिन हम्बल को, कहते हैं कि किसी पहाड़ पे वो कोड़ा पड़ता तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता, लेकिन इमाम अहमद के कदम नहीं हिले। सिर्फ एक मसले पे मैं आपको बताऊंगी, आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये सो के कुरान मखलूक है कि अल्लाह का कलाम है। ये था टॉपिक वक्त का, जो खलीफा था उसके कुछ मुफादात की वजह से उसका ख्याल क्या था कि कुरान मखलूक है। इमाम अहमद कहते थे नहीं, कुरान क्या है, अल्लाह का कलम, बल हुआ कलाम अल्लाह, कुरान में दलील थी। इतने कोड़े पड़े और आप कहते हैं आइमा कराम के जनाजे जेलों से निकले, मैंने आपने दावत इल्लाह की तो हमने तो सिर्फ नाज नखरे दिखाए हैं, अभी वल्लाही रोना आता है फूलों को देखकर जो लोग पेश करते हैं। आइमा कराम ने पत्थर खाए, उन्होंने वक्त की मुखालफतें सही, वो इश्यूज जिसको आज आप और मैं बिल्कुल ना कुछ कहें, उनके दौर में उनकी जान और जिंदगी मौत के सवाल बने थे। तो दावत इल्लाह का काम बड़ा मुश्किल है। इन सब को खिराज तहसीन देना है तो सूरज सजदा की आय 24 वजाल न मिन आई मत यहदू नबी अमरी ना लम्मा सबरू वकानु भी आयाती ना योकिनोन। और हमने इनमें से फिर ऐसे पेशवा बनाए, लीडर्स बनाए जो हमारे हुक्म के साथ हिदायत करते थे जब वो सब्र करते थे और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। तो नबी सल्लम के बाद सहाबा का दौर, सहाबा के बाद तबा ताबेइन का दौर, दीन को वसअत मिलती गई। ये तीन बेहतरीन दौर थे। उस वक्त तक मुसलमान की जिंदगी का मकसद दावत इल्लाह था। उस वक्त तक मुसलमान नबी दुनिया परस्त नहीं हुआ था, जर परस्त नहीं हुआ था, मटीरियलिस्टिक नहीं हुआ था। 18-18 साल बच्चे को पढ़ाने का गम नहीं था कि वो एक दफा कुछ तो बन जाए। उस वक्त माएं दूध पिलाते हुए कहती थी मुजाहिद बनोगे या दाई बनोगे, मुबल्लिग बनोगे। वो दुआएं देती थी मेरे बच्चों को ऐसा कर दे, इस तरह कर दे। लेकिन उसके बाद हम सब बदल गए, वक्त के साथ तब्दीलियां आती गईं। और वही सूरह फातिर की जो आयत है कि हमने तो उम्मत मुस्लिमा को चुना था, सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीन अस्तफ़ईना मिनहुम, हमने इन चुने हुए लोगों में से भी कुछ को चुना था, लेकिन फ़मिनहुम ज़ालिमुल्ली नफ़्सी वमिनहुम मुख्तसिद और तीसरे साबिकुम बिल खैरात। तो याद रखिए कि सहाबा किराम का मौजू हसास मौजू है। आज के दौर में सहाबा के बारे में कोई गलत बात के कभी मत सुनिए, कभी ना बर्दाश्त कीजिए। तो इस सारी बात का खुलासा, पहले किरदार फिर इल्म, दोनों साथ साथ भी चलता है। किरदार साजी और इल्म लेने को हमारे कल्चर में बहुत प्यारा एक नाम दिया जाता है, तालीमो तरबियत। तालीम किताब से हो जाती है, तरबियत उस्ताद से होती है। किताबें पढ़कर आप तालीम ले लेंगे, घर बैठकर तालीम मिल जाएगी, तरबियत के लिए आपको आके यहाँ बैठना पड़ेगा। इतना सब्र जो आप यहाँ कर रहे हैं, मेरा बदगुमानी है आपके मामले में कि आप कभी ना करें अकेले में। ये किए बगैर आप काम आगे नहीं कर सकते। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह इस दीन का काम आसन दर्जे पे हमसे ले, खैर के साथ ले।